तो हम थोड़ा चर्चा करें। अब अंतिम पाठ है हमारी तीन दिन की चर्चा का, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। और इसमें से कुछ पार्ट थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए थोड़ा मन लगा करके सुनना पड़ेगा। हरे कृष्ण। सो अभी तक हमने जो चर्चा की थी उसमें रूप गोस्वामी के उपदेश का थोड़ा सा अंत का जो भाग है, पांच जो रस है, उसका विस्तार से वर्णन, विस्तार में उसका मूल तत्व क्या है, उसके चर्चा क्या हमें। तो पश्चात सनातन गोस्वामी किस तरह से राजा के चुंगल से छूट करके निकल गए, उनको कारागृह में डाला गया। कारागृह में उन्होंने जो जेल कीपर था उसको ब्राइब करना पड़ा, उसको कहा भाई तुम बड़े संत पुरुष दिखते हो, जिंदा पीर दिखते हो, पीर तुमसे और भगवान के बीच में कोई है ही नहीं, तुम दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन है अल्लाह और तुम्हारे बीच में, ऐसे तो बात सब बताई। तब जाके कुछ धन दिया और परिणाम हुआ कि सनातन गोस्वामी वहां से निकल चुके। फिर गेस्ट हाउस में उनको मारने का प्लान बनाया था, तो जो प्लान सनातन समझ गए कि ऐसा हो सकता है, तो तुरंत उन्होंने क्या किया, उसको जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं थी सब उसको दे दिया। और वो पाटा पर्वत को क्रॉस करके हाजीपुर पहुंचे थे। हाजीपुर में उनका बहनोई नशाला साला रहता था, उनका नाम था, क्या नाम था, श्रीकांत। श्रीकांत उनका साला था। वहां से श्रीकांत ने उनको बड़ा विनय करके, बड़ा रिक्वेस्ट करके कहा कि आपको कुछ तो ले जाना पड़ेगा, कुछ तो उपहार, आप मेरे बहन भी हो, कैसे ऐसे जाने दो। तो क्या दिया उपहार के रूप में, एक बहुत महंगा कीमती कंबल, कीमती रजाई दे दिया, तुम इसको लेके जाओ। और पूरा दाढ़ी बाड़ी बढ़ गया था, बाल बढ़ गए थे, कपड़े फटे हुए थे, छोटे से लंगोट पहने थे, और ऊपर महंगा सा कीमती कंबल है। सनातन गोस्वामी उसको लेकर के पहुंचे वहां पर वाराणसी में। यहाँ पर वाराणसी में महाप्रभु रहते थे चंद्रशेखर के घर पे, और भोजन लेते थे तपन मिश्र के घर पे। तपन मिश्र ग्रामीण था, तो बंगाल से था। तपन मिश्र जो पहली बार मिले थे चैतन्य महाप्रभु बांग्लादेश में, बांग्लादेश में मिले तो सनातन ने, तपन मिश्र ने पूछा था उनको कि साधन साधक क्या है, क्या है कि इस युग में किस तरह से जीव का उद्धार हो सकता है। महाप्रभु उस समय उसको बताया हरे नाम है वो केवल करो नास्ते हुए नास्ते हुए, ये हरि नाम ही एकमात्र। पर उसने बताया कि मैं ही स्वयं कृष्ण हूं, तपन मिश्र को बताया, लिंगान देखो किसको बताना मत। अब दूसरी बार हम मिलेंगे वाराणसी में। तपन मिश्र सोच रहे कि वाराणसी, महाप्रभु बताए हाँ वाराणसी मिलेंगे। तो वाराणसी तपन मिश्र रहता था, चंद्रशेखर भी उधर रहते थे, और महाप्रभु चंद्रशेखर के घर पे आए थे यात्रा करते करते। कहाँ से आ रहे थे, प्रयाग से आ रहे थे, वाराणसी में रुके। चंद्रशेखर घर पे तपमिश्र के यहाँ भोजन होता था। बलभद्र भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु का असिस्टेंट था, वो उनके साथ, वो भी ब्राह्मण था, वो उनके साथ महाप्रभु के साथ रहते थे। तो प्रतिदिन महाप्रभु वहां पर निरंतर भारत सब मायावादी थे, सब निराकारवादी, शंकर संप्रदाय के, शंकराचार्य के फॉलोवर थे सब। लेकिन वैष्णव लोग के लिए तो बड़ी तपस्या हो जाती है वहां पर, वहां पर सब भगवानों को निराकार मानने वाले लोग है, तो वैष्णव रह नहीं पाता। सो मॉर्निंग क्लास दे रहे थे एक दिन सुबह, चंद्रशेखर तपन मिश्रा दोनों बैठे थे, सुन रहे थे, बलभद्र भट्टाचार्य भी था सुन रहा था, चैतन्य महाप्रभु लेक्चर दे रहे थे। और लेक्चर यहाँ पर लेक्चर हो रहा था, उधर सनातन वाराणसी में पहुंचे, मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर, सब पता पड़ता है। जाकर के पूछा कि इतने पूरे बड़े वाराणसी में महाप्रभु को ढूंढने के कब, पता तो नहीं था कि चंद्रशेखर के वो तो महाप्रभु रहते थे सनातन, तो बंगाल से आए थे, उनको कैसे पता कि महाप्रभु कहाँ पर है। तो वो आ रहे थे, ढूंढ रहे थे, पूछा भाई यहाँ पर क्या समाचार है आजकल, तो आराम से सब कुछ सही है, किसी को जाके पूछा। बोले हाँ भाई सब बढ़िया चल रहा है सब आजकल, कोई यदि समझे कोई बंगाल से एक सन्यासी आया है, वो बावला की तरह नाच रहा है, गा रहा है पागल की तरह, उसके भावुक लोग उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। ओ बंगाल पता नहीं कहाँ से आ गया है कि कुछ दिनों से आया है, रोज यहाँ पर हल्ला मचाता है, कीर्तन करता है। अच्छा नहीं, सनातन बोले ओ बड़ी दुखी बात है, मैं ऐसे बताया कहाँ पर है वो सन्यास, कहाँ पर रहता है वो, बोले वो थोड़ी पता है मुझे कहाँ पर रहता है, हाँ इतना सुना है कि उस इलाके में वहीं पर कहीं उसी जगह पर कहीं पर रहता है। तो सनातन धन्यवाद, वो सनातन तो ढूंढ रहे महाप्रभु को, ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंचे, आसपास में पूछा किसी को कि मैं सुना कोई पागल सन्यासी आया है यहाँ पर कुछ दिनों से, यहाँ से सुना इधर कहीं है कहीं रहते, बोले हाँ वो जो है ना चंद्रशेखर वो उन भावों के उसके घर पर रहते है सन्यासी। हाँ अब पता पड़ गया चंद्रशेखर का एड्रेस कहाँ पर रहते थे महाप्रभु, तो महाप्रभु लेक्चर दे रहे थे, मॉर्निंग क्लास दे रहे थे। और वहां पर आकर सनातन गोस्वामी सोच रहे महाराज इतना गंदे पूरा बाल बिखरे हुए, दाढ़ी पड़ी हुई, एकदम देखने से फकीर लगता था, कोई भिखारी लग रहा है ऐसे देखने से, ऐसा वेश बना कर गए थे। तो महाप्रभु लेक्चर खत्म किए, महाप्रभु कहे चंद्रशेखर को देखो बाहर कोई संत आके खड़ा है, उसको अंदर लेके आओ, एक बड़ा शुद्ध भक्त कोई वैष्णव बाहर आए उसको अंदर लेके आओ। सनातन बाहर गेट के बाहर ही खड़े थे, चंद्रशेखर आए, आकर के देखा अंदर आए कोई नहीं, पहले सोचा महाप्रभु बोले तो कुछ तो होना चाहिए, ऐसे महाप्रभु को कैसे पता पड़ गया बाहर कोई आया है, कुछ तो होना चाहिए, उन्हों कोई नहीं है महाप्रभु, बात तो कोई नहीं है, बोल तुमने ढंग से देखा नहीं होगा, जाओ फिर से देखो बाहर कोई है कि नहीं। बाहर जाकर देखा तो ऐसा ही भिखारी जैसे डबड़ी डाढ़ी बाल सब बिखरे हुए, ऐसा कपड़े पहने, फटे हुए कपड़े पहने मैले, ऐसे ही आदमी खड़ा है, दरवेश, दरवेश उस प्रकार के लोग थे, भिखारी फकीर। तो दरवेश जैसा जाकर बोला कोई बाहर कोई दरवेश जैसा कोई है खड़ा है, हम बोले महाप्रभु तो रुक नहीं पाए, महाप्रभु पीछे पीछे ही आ गए उसके, सनातन वल्लभ तो अंदर आने से पहले चंद्रशेखर केवल मुड़े बताने के लिए कि कौन है, पहले बोल दिया महाप्रभु उसको अंदर लेके आओ, बोले बोलने आए सनातन जो बाबा जो भी हो भिखारी थे आपको प्रभु अंदर बुला रहे हैं, ఆ ప్రభు అందరు బుల్లా సనాతన గోస్వామి సోచనకి మే ప్రభు పహచాన్ లియే జాన్ లియే కి మే ఆగే ఆ హూ లేకిన్ మే తో ఘర్ కే బాహర్ హీ ఆ గయే చైతన్య మహాప్రభు ఆకర్ కే సీదా ఆలింగన్ డాల్ దియా సనాతన గోస్వామి और सनातन के चरण में गिरे, चरण में चरण में नहीं आलिंगन दिया, पूरा आलिंगन दे दिया, कस के आलिंगन दे दिया कि मेरा सनातन है। और चंद्र शेखर से चौंक गए, अरे बाबा ये कौन है? तो महाप्रभु स्वयं इसको आलिंगन दे रहे, कौन है ये महात्मा? इसको मैं पहचान भी नहीं पाया। महाप्रभु बोले ये मेरा सनातन है। जब महाप्रभु ने बताया कि मेरा सनातन है तब तो सनातन के आंखों में से चरण आंखों में आंसू बहने लगे। महाप्रभु ने मुझे अपना बना लिया, मेरा सनातन है। और भक्त लोग भी सोचते लगे जब महाप्रभु इतना प्यार करते हैं इसको मेरा सनातन बता रहे तो अवश्य कोई साधन तो हो ही नहीं सकता। महाप्रभु उसको अपने पास लिया, महाप्रभु ने कहा कि ये सब कुछ छोड़ के आया है, सबका संन्यास सब सब त्याग करके आया, बड़ा भाई रूप का रूप गोस्वामी का बड़ा भाई है सनातन। चंद्रशेखर को कहा कि जाओ तुम इसको स्नान मान कराओ, इसका शेविंग वेविंग कराओ और फिर भोजन की व्यवस्था कर दो। तो स्नान मान कराया, शेविंग वेविंग कराया, मैले कपड़े पहने थे सनातन ने। उन्होंने चंद्रशेखर ने बोले नए कपड़े दिए, बोले लो नए कपड़े पहनने के लिए, महाप्रभु का आदेश था नए कपड़े देना है इसको पहनने के लिए, अच्छे प्राइम मिनिस्टर था ना, अच्छे कपड़े देना है इसको पहनने के लिए, अच्छे कपड़े दिए पहने। सनातन मना कर दिया, बोले नहीं नहीं चाहिए, लो महाप्रभु का आदेश, बोले नहीं नहीं चाहिए, वो नहीं लेना है। ये तुम्हें फटी हुई धोती पहनी है तुमने, फटी हुई एक लंगोट है छोटी सी गमछा जैसा, ये पहना इससे क्या होगा, बदल लो इसको ले लो। नहीं किया, मैं कपड़े पहन लो इसको हटाओ, शेविंग करके एकदम सुंदर चमक रहे थे, सिर पे सारे बाल हटा दिए, दाढ़ी बाड़ी सब निकाल दिया, फिर बोले भोजन के लिए तपन मिश्र के घर आमंत्रण दिया, तपन मिश्र के घर गए। तपन मिश्र के घर जाकर महाप्रभु देखा अभी भी वही कपड़ा पहना है पुराना, कल वाला फटा हुआ। महाप्रभु तपन मिश्र को बोला इसको बोलो कपड़ा बदल लो महंगा वाला। और तपन मिश्र आए, देखो प्रभु का इच्छा है कपड़े बदल लो, नए कपड़े नहीं बदल सकता, नए कपड़े तो नहीं ले सकता, अगर तुम कपड़े बदल नहीं चाहते हो तो तपन मिश्र का आपके पास कोई जूनी पहन है क्या, आपका कोई जूनी धोती पुरानी यूज की हुई कोई कपड़ा है, पुराना धोती कोई? तपन मिश्र बोले हाँ एक पुराना धोती है, बस वही दे दो। तुम तपन मिश्र ब्राह्मण है ना, चंद्रशेखर को मना कर दिया था। तपन मिश्र को बोला कि तुम्हारा पुराना कोई धोती दे दो, वो मैं पहन लिया, पहन लिया वही पहन लिया। पहनने के महाप्रभु के पास गए, भोजन लिया, महाप्रभु उसको बात करते थे, हर थोड़ी देर पे महाप्रभु उसको उसके वो जो कंबल था ना रेशमी उसको देखते थे, कुछ बोलते नहीं थे, थोड़ी थोड़ी देर में उसके कंबल को देखते थे। तो सनातन बहुत चतुर है, बहुत स्मार्ट है। सनातन गोस्वामी सोचे महाप्रभु बात करे कंबल को क्यों देख रहे, क्या महाप्रभु कंबल चाहिए ना, ये कंबल होगा वो तो सन्यासी होगा तो बड़ा ये कंबल है। कुछ सोचे बिना कुछ बात किसी को कुछ कहे बिना सीधा उठ करके चले गए गंगा तट पे। गंगा तट पे एक भिखारी बैठा था, सारा संत था ब्राह्मण, कोई भिक्षा मांग के जीवन यापन करने वाला कोई साधारण व्यक्ति था। भिखारी तक फटी हुई वो गोदड़ी बोलते उसको छोटी सी, पता है गोदड़ी किसको बोलते हैं? मिस वो जो रुई वाला था वो नहीं, और पुराने कपड़े से कपड़ा एक के ऊपर दूसरा कपड़ा, फिर तीसरा कपड़ा, चौथा कपड़ा, ऐसे पांच सात दस प्रकार के ऐसे कपड़े इकट्ठे करके फिर उसको सिलाई करके वो उसको फिर पहनते हैं। उसको ठंडी में काम आता है, ये बैठने के लिए काम आता है। तो फटा हुआ था ऐसा, वो बेचारा वो सुखाने के लिए रखा था, धो करके फटा हुआ था रखा था जमीन के ऊपर नदी के तट पे। अथनातन गोस्वामी आए, कहा कि महाशय, बोले हाँ, बोले आप मुझे हमें एक गोदड़ी दे सकते हो? और उसके सामने मैं तो मेरा ये कंबल दे दूंगा। तो कहा ऊपर से नीचे से देखा पाए, बोले दिखने से तो आप सज्जन व्यक्ति दिख रहे हो, मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो, उपहास क्यों कर रहे हो मेरा? कोई सज्जन व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता, एक गरीब का उपहास किया गया है, मेरे पास से फटी हुई कोई है तो क्या हो गया, लेकिन ऐसा उपहास तो मत करो। तुमने नहीं, उपहास नहीं कर रहा हूं, गलत बात समझो, मैं सच बता रहा हूं। महाराज आप भी, आप मेरा यह फटी हुई गोदड़ी तुम्हारे क्या काम, और तुम इसके सामने नया अपना क्यों दोगे? क्या तो बुद्धि मुझ में भी है, ऐसा क्यों करोगे? बोल मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता है, ये मुझे नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। और इतना बोलते बोलते सनातन ने अपना कंबल उसके कंधे पे ऊपर डाल ही दिया। बोल आगे बात ही मत करो, बोले ये कंबल तुम रखो और उसका जो गोदड़ी उठा लिया, इसको मैं दे देता हूँ, मैं तुम्हें अपना कंबल दे दिया। बोले अरे वाह, नया कंबल अचानक से ये हो गया है। सनातन वही फटी हुई गोदड़ी पहन करके महाप्रभु के पास पहुंचे। महाप्रभु के पास जाकर के प्रणाम किया, महाप्रभु को देखा वो फटी हुई गोदड़ी पहनी हुई, वो कंबल तो चला गया। तो फिर महाप्रभु हंस के बोले कि सनातन कंबल क्यों गया? तो सनातन ने कहा कि प्रभु मैं समझ गया था, बार बार आप उसको देख रहे थे, मैं समझ गया था कि ये उचित नहीं है, आपका इशारा मैं समझ गया था, इसलिए मैंने इसको दान दे दिया। पूरा हिस्ट्री स्टोरी बताया, एक गरीब के पास जाकर के उसकी पुरानी कोटली ले ली, फटी हुई, और उस नया कंबल उसको दे दिया। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, महाप्रभु ने कहा बहुत अच्छा किया, क्योंकि कोई वैरागी के पास नया कंबल होता है तो ये उपहास का कारण बनता। पीपल विल सी, लोग देखते हैं कि ये तो सब कुछ त्याग दिया है और कंबल पकड़ के बैठे हैं, सब कुछ छोड़ दिया उसने, कंबल में आ सकती है उसने, बहुत अच्छा किया। सनातन गोस्वामी ने कहे कि प्रभु एक अच्छा डॉक्टर जो होता है, अच्छा जो डॉक्टर होता है वो कोई भी रोग का एक अंश भी रखते नहीं है शरीर में, वो अच्छा डॉक्टर होता है, पूरा साफ करते हैं रोग को, पूरा थोड़ा बाकी नहीं रखते हैं, वो प्रॉपर डॉक्टर है। तो आपने उसी प्रॉपर डॉक्टर की तरह कोई भी आसक्ति कहीं भी बाकी ना रहे, यू आर वेरी परफेक्ट, यू आर गुड डॉक्टर, यही काम करता है ना गुरु, गुरु महाराज भी यही काम करते हैं, कृष्ण गुरु ये आपसे यही कार्य करते हैं। एक भी चीज बाकी रहेगी आसक्ति में, एक भी चीज होगा उसको भी गिन गिन कर निकालेंगे, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, एक भी बाकी नहीं रहना चाहिए। प्रॉपर डॉक्टर तो वही होता है ना जो प्रॉपर उपचार करे, पूरा उपचार करे, एक भी चीज नहीं रखेंगे। हो सकता है आपको कष्ट हो, ऐसा क्यों, लेकिन यही एक उचित अधिक जो उत्तम जो डॉक्टर है इसका क्वालिटी है। तब फिर महाप्रभु उनके सनातन ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, आप मुझे अपना सनातन बता रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, इतना मुझे कृपा दे रहे हो, लेकिन इससे काम नहीं पड़ेगा, आपको सिखाना भी पड़ेगा, मुझे सिखाओ, वो शिक्षा तो मुझे। सनातन महाप्रभु ठीक है, కలిసినట్టునే శిక్ష ప్రధాన కడుక. ప్రధాన లగాతార్ దో మహీనే తక్ సనాతన గోస్వామి కో శిక్ష ప్రధాన లగాతార్ దో మహీనే దాంత మే తినకా లేకే శరణాగతి హో గే మహాప్రభు కో. మహాప్రభు కా కృపా ప్రాప్త్ కర్నే కా జో సబ్సే బడా క్వాలిటీ హై కిసీ భక్త్ కే లియే వో హై వినమ్రతా. अगर महाप्रभु का कृपा, चैतन्य महाप्रभु का कृपा, कृष्ण का कृपा अगर आप चाहते हो प्राप्त हो आकर्षण प्राप्त हो तो विनम्रता ये सबसे बड़ा क्वालिटी है. जिस भक्त में विनम्रता है उसी को कृपा अधिक मिलता है. सनातन गोस्वामी ये प्रूव करके दिखाया. अगर जिसको सीखना होता है ना उसको नम्र बनना पड़ता है और जो नम्र बनना नहीं जानते वो जीवन में कुछ सीख नहीं पाते. जो लोग जीवन में कुछ सीख नहीं पाते वो लोग जीवन में आगे भी नहीं बढ़ पाते. वो लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ते उनका जन्म बेकार हो जाता है. उसको ऐसा लगता है कि मैं बड़ा विद्वान हूं, बड़ा प्रसिद्ध हूं, मुझे सब आता है, मैं एक एक्सपर्ट हूं, लेकिन वही रोग में फंसा पड़ा रहता है और विनम्रता का मार्ग स्वीकार नहीं करता. जैसे वो भक्त विनम्र बनना शुरू कर देता है तुरंत कृपा का प्रवाह अपने आप शुरू हो जाता है. उसको पता भी नहीं पड़ता उसको कृपा प्राप्त हो रहा है. जैसे ही भक्त विनम्र बनता है तुरंत कृपा, तुरंत. जैसे समझ लो कि इस कमरे में जल, यू नो, लोटा भर के पानी इधर डाल दो इस कमरे में. अभी इस कमरे में जो स्थान सबसे नीचा होगा पानी को उधर जाएगा, पानी उधर जाएगा ना अपने आप. आपकी परमिशन लेगा पानी कि मैं उधर जाऊं कि नहीं जाऊं? पानी अपने आप जाएगा ना. जो स्थान सबसे नीचा होगा सबसे पहले पानी उधर जाएगा. अर्थात जो भक्त सबसे विनम्र है कृपा सबसे पहले उधर जाएगी, सबसे पहले कृपा उसको मिलेगी, फिर दूसरे को मिलेगा, पहले उसको मिलेगा. दिने अधिक दया करे भगवान. दीन जो है वैष्णव, जो अपने आप को तुच्छ मानते हैं उसको सबसे पहले कृपा प्राप्त होते हैं. तो सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने यह शिक्षा प्रदान की. चैतन्य चरितामृत का जो चैप्टर 20 है इसका शीर्षक श्री प्रभुपाद जी ने रखा है चैतन्य महाप्रभु का सनातन गोस्वामी को परम सत्य के विषय में उपदेश. मध्य लीला चैप्टर 20 इसमें इस बात का, जैसे 19वां अध्याय जो था जिसकी चर्चा हमने कल की थी जिसमें रूप गोस्वामी को संदेश है, और 20वें अध्याय में सनातन गोस्वामी को संदेश का शुरुआत होता है. वहां से शुरू होता है सनातन गोस्वामी का संदेश और पूरा मध्य लीला समाप्त होता है तब तक एक चैप्टर छोड़ करके अंत में सनातन गोस्वामी को ये शिक्षा प्रदान की जाती है. चैप्टर 20 से लेकर के 24 तक, 20, 21, 22, 23, 24 पांच अध्याय सनातन गोस्वामी का शिक्षा है चैतन्य महाप्रभु देते. बहुत सुंदर शिक्षा है, लेकिन ये पांच, ये शिक्षा पांच अध्याय में जो है उसको अगर आप समझ लेते हो, उसको सीख लेते हो प्रॉपरली, देयर इज नथिंग लेफ्ट, कुछ बचेगा नहीं समझने के लिए. सब सीख लो, सब कुछ सीख लो, सीखने का सब कुछ इसके अंदर है. आप सोचिए कि हम आपके सामने एक अध्याय का थोड़ा सा सार प्रस्तुत करने वाले हैं थोड़ी देर में, लेकिन अगर ये पांचों अध्याय को सीख रहा हो तो बहुत समय चाहिए. लेकिन ये पांच अध्याय अगर हम सीख जाते हैं तो यू गॉट पीएचडी, फुल अंडरस्टैंडिंग. तो सनातन शिक्षा जो है वो मैं केवल उसका शीर्षक बताता हूं. पहले अध्याय में परम सत्य का विज्ञान है, 20 मिस पांच में से जो पहला अध्याय उसमें परम सत्य का विज्ञान है, दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण का ऐश्वर्य और माधुर्य का वर्णन है, दूसरे अध्याय में कृष्ण का ऐश्वर्य और कृष्ण का माधुर्य ये बताया गया है। फिर तीसरे अध्याय में है भक्ति योग की विधि, भक्ति योग की पद्धति प्रोसेस विधि, ये पूरा विस्तार से बताया है किस तरह से भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। वेरी ब्यूटीफुल, ये चैप्टर इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ डिवोशन सर्विस, वेरी नाइस। सब श्लोकों में केवल भक्ति योग का महिमा गाना है और कुछ नहीं है, सब श्लोकों में। और फिर तीसरा अध्याय है, चौथा है जीवन का अंतिम लक्ष्य कृष्ण प्रेम, ये समझाया गया है विस्तार से, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम। और फिर पांचवा अध्याय में है आत्माराम श्लोक के 61 अलग अलग अर्थ, 61। ये पांच अध्याय में सनातन शिक्षा दी है, पहले में परम सत्य का विज्ञान, फिर दूसरे में है ये भगवान का ऐश्वर्य और माधुर्य कृष्ण का, तीसरे में है भक्तियों का महिमा, चौथे में जीवन का अंतिम उद्देश्य कृष्ण प्रेम, और पांचवे में है आत्मराम श्लोक के 61 अलग अलग अर्थ। ये पांच सब्जेक्ट है सनातन शिक्षा, जिसमें से हम आपके साथ 20वें अध्याय का छोटा सा सार आधे घंटे में प्रस्तुत करेंगे। सो हम साधन गोस्वामी सबसे पहले महाप्रभु को पूछा, टेक्स्ट नंबर 99 में उन्होंने बोला, टेक्स्ट नंबर 98 में बोले हैं, तबे सनातन प्रभुर चरण धरिया दैन्य विनति करे दंत त्रिनलया। चैतन्य महाप्रभु के सामने सनातन गोस्वामी दांत में तिनका लेकर के विनंती करने लगे और बोलने लगे। दांत में तिनका लेने का अर्थ होता है अपने आप को तुच्छ घोषित करना, पशु, मैं आपका पशु हूं। और क्या कहा, नीच जाति नीच संगे पतित अधम, कुविषय कुपे पड़े गुआई जन्म। मैं नीच जाति हूं हे प्रभु, नीच जाति, नीच संगी मुस्लिम का संग किया, मांस खाने वाले का उसका संग किया, नीच जाति नीच संगी, पतित धम, मैं बड़ा पतित, मैं आप चर्चा कर रहे थे ना, अपने आप को विनम्र घोषित करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई नाटकबाजी नहीं है, ये हृदय में जो है वही है, वही बात बता रहे हैं, वही उसी पर कृपा प्राप्त होती है। कुविषय कुपे, कुविषय कुपे, कुविषय को भी बहुत ही इंद्र के, ये इंद्र तृप्ति के विषय में गिर करके गुवाएं जन्म, मैंने अपने जीवन बेकार कर दिया। कभी हम सोचते हैं ऐसा, कभी बहुत मुश्किल होता है। मैं अभी तक, अभी आप सोचो कि आपका आयुष्य 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल जो भी आपका आयुष्य हुआ है, चेक कीजिए, कभी हम चेक करना चाहिए कि अभी तक का मेरा जो जीवन है वो घाटे का सौदा हुआ या लाभ का, क्या प्राप्त किया मैंने अभी तक कृष्ण भक्ति में, कितना प्रसन्न किया मैंने भगवान को, कितना सेवा कर पाया मैं कृष्ण की, ये सोचना चाहिए। तो कुविषय कुपे पड़ी गुआएं जन्म, अगर अभी अगर संभल नहीं पाएंगे तो कब संभलेंगे अपने आप को, अगर अभी अभी नहीं सुधर पाएंगे हम तो कब सुधरेंगे, अगर अभी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा तो कब परिवर्तन आएगा, अभी हम परिवर्तन की रिक्वायरमेंट है। और हमें ये पता है कि भगवान के शरण के अलावा और कोई साधन नहीं है और कोई उपाय नहीं है, फिर टेक्स्ट नंबर 100 से शुरू होता है, कुछ टेक्स्ट नंबर सब 404 तक टेक्स्ट ये सनातन का पहला सनातन शिक्षा का पहला अध्याय। अपना रहिताय तकि छुई न जानी, ग्राम्य व्यवहार पंडितता ही सत्य मानी। लोग मुझे पंडित मानते हैं, विद्वान मानते हैं, प्राइम मिनिस्टर मानते थे लोग, पंडित लोग पहचानते थे, फेमस था। ग्राम में व्यवहार है पंडित, सब आता है ग्राम का व्यवहार इतना एक्सपर्टली, ताई सत्य माने लोग भी बोलते थे और मैं भी मानता था कि हाँ मैं एक्सपर्ट हूं, ताई सत्य माने। किंतु अपना हिता हित किछु ही नहीं जाने, मुझे ये ही नहीं पता कि मेरा हित किसमें है और मेरा अहित किसमें है, मुझे इतना भी नहीं पता। सोच मैं इतना पंडित हो लेकिन इतना भी नहीं पता। के आमी कहने आए जागता पत्र है, यहां ना ही जाने के मन है तो है। आगे कहा उन्होंने, मैं कौन हूं, क्यों कहने आए जागता पत्र है, मुझे एक सब प्रकार के त्रिविधता तीन प्रकार के आदि दैविक आदि आत्मिक आदि भौतिक ये मुझे क्यों भुगतने पड़ते हैं। जब तक मुझे इतना ही नहीं पता तब तक मेरा हित कैसे हो सकता है। क्या मैं कौन हूं ये जानना बहुत आवश्यक है। इसको बोलते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये ब्रह्म जिज्ञासा है, मैं कौन हूं ये तो जानना पड़ता है। क्या फायदा जब तक आपको यही नहीं पता कि किस तरह से मेरा अपना अस्तित्व क्या है, मैं स्वयं सदास हूं, मैं स्वयं सो भक्त हूं या मैं स्वयं सो मिस्टर देश मिस्टर भाई हूं, लेकिन ये मेरी असली पहचान नहीं है। मेरा असली पहचान है कि मैं भगवान की सेवा में किस तरह से जुड़ा हुआ हूं, ये जानना आवश्यक है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आपका ये जानना हूं। क्या हमें क्या नाम है चारे तापत्र है, तापत्र है, तापत्र का अर्थ है तीन प्रकार के ताप, अलग अलग मन से शरीर से मिलने वाले दुख, देवताओं से मिलने वाले दुख प्रकृति के माध्यम से, और अलग अलग जो भौतिक जीव है उनके माध्यम से मिलने वाले कष्ट, ये सब मिला करके त्रिविध ताप होते हैं। इससे कोई बच नहीं सकता, सबको भुगतना पड़ता है। ये इंक्वायरी होनी चाहिए, अच्छा इंक्वायरी है ना। हमारे पीछे बोलिए, के आमी कहने आमाए जारे तापत्र आए, यहाँ ना ही जाने के मन हित होए। के आमी कहने आमाए जारे तापत्र आए, यहाँ ना ही जाने के मन हित होए। तो ये प्रश्न हम सबको होना चाहिए कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवान के पास जाकर के यही प्रश्न पूछा सनातन गोस्वामी ने। समझ लो कि यहाँ पर अभी 12:45 हुआ है, समझ लो 12:45 आपको बता दिया जाए कि 1:30 बजे कृष्ण प्रकट होने वाले बाद, और आप सबको वहां पर आप मिल सकते हो, उनको बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, तो क्या करो, भगवान आपको कहेंगे मांगो क्या क्या पूछा है, पूछो क्या चाहिए, मांगो जो चाहिए, तो क्या करेंगे। अरे बाबा, तो सोचा भी नहीं था, पहले बोला होता प्लान बना क्या था, पहले प्लान बनाया होता तो मांगने का अच्छा रहता। भगवान बोले मांगो क्या चाहिए, जो जो मांगने लाओ, लाओ लाओ पेन लाओ पेपर लाओ, लिस्ट बनाना पड़ेगा, ऐसा बनाना सोच। लेकिन भगवान के पास जाकर कोई ऐसा थोड़ी, आप सोचिए भगवान के पास जाके आप करेंगे क्या, कोई बताना चाहता है। अगर समझ लो कृष्ण आपके सामने आ गए, आपको पूछ रहे कि मांगो क्या चाहिए, क्या बात है, তুই ভাঙে অল্প গাড়ি চেঞ্জ করনা খতম বদল দো মে ঘর মে বাথরুম পানি নেই আ রা ভগবান কুছ মানে থোড়ি ক্যা এসে চিজ মানে ক্যা গে ও পাত প্রসিদ্ধ স্টোরি পাত কথা কথা পাতো এক বুড়ি ঔরত সংক্ষিপ বাতা সোনাগা আপনার কথা হ্যাঁ লকড়ি বালি ছোড় ও লকড়ি কাটতি বুড়িয়া আর লকড়ি কাটকে যে পয়সা পাতা খানা হতা থা সংক্ষিপ বাতা তো লকড়া কাটনে কাটনে মে উসো লগা কি আজ কুচ আচ্ছা ফিস্ট খাতে আচ্ছা কুচ খানা মিলে রোজ ক্যা ওই সুখী চপাটি সবজি খাতে এসে আজ কুচ আচ্ছা খাতে লকড়ি তো বলো সুবে সে শাম তো দোপহর কো লকড়ি কাটনা বন্ধ হয়ে যা মার্কেট মে বেচ দিতে থি পয়সা আতা থা খাতে আজ বলে জাদা লকড়ি ইকট্ঠি করতে হুম জাদা পয়সা মিলেগা তো জাদা লকড়ি ইকট্ঠা ক্যা সুবে সে লেকে লকড়ি কাটতে কাটতে শাম তক কাটতে রে ও বলে বুড়িয়া কো হো গ্যা গ্যা আজ বলে কিসে কো পুছা ভাই ক্যা বলে আজ তো জাদা পয়সা কমা জাদা খাওয়া হ্যাঁ শাম হো গ্যা ইতনা ঢের বন গ্যা লকড়িও কা আব থি বৃদ্ধ বুড়ি উমর মে উঠা নেই পা কিসে কো বোলা ভাই থোড়া মদদ করো উঠানে কে লিয়ে উঠ নেই রে দু তিন লোকো উঠকো উঠা করকে সির পর লাগা বলে রাত তক তো মার্কেট বন্ধ হয়ে যায়গা তুম পৌঁছতে পৌঁছতে তো রোজ নেই পৌঁছায়গে আজ আচ্ছা খানা হলে খাওয়া ঠিক পড়া পর্ব উঠা করকে ইতনা সুবহ সে লেকে শাম তক লকড়ি কাটনে মে ইতনা তকলিফ থি কি উতনা খানি না পানি পিয়া না খানা খায়া কুছ নেই উঠা করকে চলে আচ্ছা খায়েগে ফিস্ট খায়েগে আজ তো উসো লকড়ি কা মোজা উঠা করকে পেদল চলতে চলতে নিকল রয়ে থে গাঁ কি ওর আ রে থে ওই চক্কর তো সব লোক চলে গে আপনি আপনার ফিরি হয়ে গেছে ইতনা মোজা উঠা করকে আ রে থে সির পর বড়ি প্যাস লগি থি আব তো কুছ নেই হো সকতা আব তো মর যায়গে পানি নেই পিয়েগে তো পানি তো পিনা হি পড়েগা পানি পিনে কে এক আচ্ছা সুন্দর নদী থা স্বচ্ছ পানি পর উসনে আপনার সব ঢের সাইড মে রখ দিয়া আর পানি পিনে কে লিয়ে গে পানি পিয়া পানি পি কে লাই লকড়ি উঠে উঠ নেই রে পহলে ভি তো নেই উঠা থা অব তো অব থোড়ি উঠেগা আব কিসকো বুলায় কোই থাই নেই আজে বাজু উঠানে বালা কোই হাই নেই ও সোচে কি মার্কেট বন্ধ হয়ে যায়গা ভুখা দেনা পড়েগা পয়সা নেই আয়েগা ক্যা করেগি চাই কতনা ভি আদমি কষ্ট মে হো তো উসকো তুরন্ত উসকে মুখ সে ক্যা নিকল জাতা হে হে ভগবান আব ক্যা করুগা কতনা ভি আগর ও নেই মানতা ফির ভি নিকল জাতা হে হে ভগবান আব কোই আব ক্যা করে তো বড়ি দুঃখী হো গই ও আর ভগবান উসতো বলা হে ভগবান আব ক্যা করো তুরন্ত ভগবান উপস্থিত হো গে অগ্রষ্ট উদর আগর কে বলে হ্যাঁ বলো ক্যা বাত হে তো মাগো ক্যা চি বল বলে লকড়ি কা বোঝা উপর উঠা করকে দে দো আরে কা কি দেখো মে স্বয়ং ভগবান হু মে কৃষ্ণ হু স্বয়ং ভগবান মাগো তুম জো মাগো মে দে সকতা হুম তুমে বলে ইয়ে লকড়ি কা বোঝা উঠা করকে দে আরে মে তুমে ধন দে সকতা হুম ভোজন দে সকতা হুম মহল দে সকতা হুম মুক্তি দে সকতা হুম জো মাগো সব ভালে বোলা তো বোলা না ইয়ে লকড়ি উঠা কে দে দো সর কে উপর ঠিক হ্যাঁ তো থাস তো উড়া কে তো লকড়ি উড়া কে সর কে উপর ডাল দিয়ে ویسا جو ভগবান কে পাস যা কর কে ইয়ে মানা হো ইয়ে লকড়ি কা বোঝা উঠা কর কে দে দো এক মাছ প্রভুপাদ বতা দে এক মছুয়ার এক মছলি পকড়নে वाला था वो क्या वो समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जो तट पे जाल लेकर के जाना पड़ता है वो नौका तो उसमें कंकड़ कंकड़ पत्थर होते छोटे 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 पत्थर तो वो पत्थर को पैदल में उसको चूपता था पाँव में रात पैदल जाना पड़ता था तो चूपता था उसको पाँव में तो चूपता था तो वहां पर जाकर के एक दिन वो बैठा था सोच रहा था कि अगर मेरे पास बहुत धन आ जाए तो मैं क्या करूंगा, ये सारे किनारे पर जहां कंकण है समझ के गद्दियां बिछा दूंगा, गद्दी पर से चलूंगा। प्रभुपाद कहते हैं वो मूर्ख है, उसको पता नहीं था कि भाई तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा तो तुम माची क्यों पकड़ोगे, ये धंधा क्यों करोगे ना, ये बुद्धि है उनको पता नहीं होता। ये जगन्नाथ है भाई, ये कृष्ण है, सारी सृष्टि इनके पास है और आप ये छोटा मोटा मांगते हो, ये दो वो दो ये दो। भगवान के पास जाओ तो ऐसे पूछो कृष्ण को, जैसे पूछा सनातन गोस्वामी को। सनातन गोस्वामी ने पूछा कि के आमाए कहने आमाए जा रहे तापत्र आए, हे प्रभु मुझे बताइए मैं कौन हूँ, मुझे आत्मज्ञान दीजिए ये बताइए। फिर आगे पूछा साध्य साधन तत्व पूछित न जाने, कृपा करे सब तत्व कहत आपने, हे प्रभु साध्य साधन क्या है ये बताइए। साध्य और साधन का अर्थ क्या है, साध्य किसे कहते हैं, जो प्राप्त करने के लिए जो वस्तु होती है उसको साध्य कहते हैं, वो लक्ष्य उसको साध्य बोलते हैं। और साधन क्या होता है, उसको प्राप्त करने का उपाय। कभी किसी को भी मिलो, कोई किसी भी संप्रदाय का है कोई भी है, उसको अगर पूछो भाई तुम्हारा साध्य साधन क्या है, तब पता पड़ेगा कि वो किस मार्ग से जुड़ा हुआ है। साध्य साधन तुम्हारा लक्ष्य क्या है और उसको प्राप्त करने की विधि क्या है, ये प्रश्न पूछा। महाप्रभु ने आंसर देना शुरू किया, महाप्रभु बताए जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर चतुष्ठा शक्ति भेदा वेद प्रकाश। भगवान ने कहा जीव का जो स्वरूप है वो है कृष्ण का नित्यदास, यही तुमने प्रश्न पूछा था मैं कौन हूं, ये है तू क्या आने के। जीव का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो है दास, और कृष्ण का दास ये कृष्ण तटस्था शक्ति भेद अभेद प्रकाश, कृष्ण की तटस्था शक्ति है। तटस्था शक्ति का अर्थ होता है कि वो भक्ति में भी आ सकता है और वो माया में भी जा सकता है, इसलिए इसको तटस्था शक्ति बोलते हैं। फिर भगवान ने बताया विस्तार से कि तीन प्रकार की शक्तियां हैं भगवान की, एक है पराशक्ति, दूसरी है अपराशक्ति और तीसरी है तटस्था शक्ति। पराशक्ति में होता है वैकुंठ, भगवान का दिव्य धाम, और ये सब शक्तियां पराशक्ति में आती है, अंतरंग शक्ति, भगवान का धाम, भगवान का लीला, ये सब पराशक्ति में आता है ऊपर। और अपराशक्ति जो है वो है भूमि रापो नलोबायु खमेवच, इसको दूसरे श्लोक में भगवान ने क्या बताया, विद्यम प्रकृति में परम बड़े सच इतस्तन्याम। तो अपर्याम इतस्तन्याम बुद्धि प्रकृति में परम जीवभूत महाभार, ये तो भगवान ने कहा कि ये अपराम और ये परा। कई बार जीव को पराशक्ति भी बोलते हैं, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्था शक्ति, ये तीन शक्ति है। और मुख्य रूप से तटस्थ और अंतरंग शक्ति को पराशक्ति में बोलते हैं और बहिरंग शक्ति को अपराशक्ति में बोलते हैं। तो तटस्थ शक्ति जीव है, अंतरंग शक्ति भगवान का धाम है, भगवान की भक्ति है, और बहिरंग शक्ति माया है। तीन गुणों से बनी हुई जो माया है जिससे हम आकर्षित होते हैं मोहित होते हैं, ये भगवान की बहिरंग शक्ति, इसको पार करना असंभव है, देवी ऐसा गुणमय मनो माया बहुत मुश्किल है, जरूरत है यार। तो कैसे क्या करें, माने वो ये प्रपत्यंत, अगर तुम मेरी शरण में आते हो तभी इसको तुम पार कर सकते हो, माया में तम तरह ये जीव जो है तभी इसमें से निकल करके भगवान की शरण में आ सकता है। तो इन तीन प्रकार की शक्ति में से तटस्थ शक्ति जो जीव है वो अलग अलग प्रकार के रूप से इस संसार का एक्सप्लोरेशन करता है। क्या बोलते हैं भगवान, ममैवांसु जीवलोके जीवभूत सनातन
प्रकृति कर
प्रकृति में रहकर के उसको भोग करने का प्रयास करते हैं। हम सब लोग किसी न किसी तरह से अलग अलग रूप से प्रकृति में भोग बनने भोगी भोक्ता बनने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद यूज्ड टू कॉल दिस वर्ड एज लॉर्ड इट ओवर द नेचर। लॉर्ड इट ओवर द नेचर का अर्थ क्या है? स्वामी है नहीं हम प्रकृति के, लेकिन स्वामी होने का दावा करना, गलत दावा करना, मैं स्वामी हूं, मैं भोक्ता हूं, मेरी संपत्ति, मेरा बैंक अकाउंट है, मेरा परिवार है, मेरी पत्नी, मेरे भोग के लिए, ये सब स्वामी होने का दावा करना है। ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है तुम्हारा, कुछ भी नहीं है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशावास्यम इदम सर्वम, यत्किम सब कुछ ईश्वर की संपत्ति, तुम्हारी है क्या, तुम लेके क्या आए थे, कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। तो लेकिन हम इसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, और एक्सप्लॉइट करते करते माया जो है वो हमें सिखाने का काम करती है कि आपको जब तक तुम्हारी ये भावना जाएगी रहे ना एक्सप्लोटेशन की, तब तक इस जेल में से बाहर नहीं निकल सकते। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए यसे भवना निविवर्ति दुर्गा। भगवान बताया कि ये दुर्ग की जो हेड है, दुर्ग का क्या होता है, किला, दुर्ग, दुर्ग बोलते हैं ना, पूरा बाउंड्री इसके बाहर नहीं जा सकते तुम, दुर्ग, और उसको संभालने वाले जो दुर्ग, दुर्ग को जो संभालते हैं वो है दुर्गा, वो है दुर्गा जो दुर्ग को संभालते है। छाए वो यसे भुवना निविवर्ति दुर्गा इच्छा रूपम भी चेष्टते सा। लेकिन ये दुर्गा भी भगवान की इच्छा के अधीन है। गोविंद मामि पुरुषम तमाम, ये आपको ऐसे ज्ञान नहीं देगी जब तक वो हाबुलबू का सुना आपने कथा, हाबुलबू एक सजा थी बंगाल में। वो सजा कैसे थी कि कोई अगर चोरी करता, गलत काम करता, अपराध करता तो उसको रिमांड पे देना पड़ता। रिमांड में कैसे देते, उसको कष्ट देते, उसको उसका सिर पकड़ करके नदी के पास ले जाते और नदी के अंदर पूरा उसको डुबो दे, गले तक का यहाँ तक ऐसे डुबो देते थे पानी के अंदर। फिर क्या करते थे, उसका माथा जो है वो पानी के अंदर पूरा डाल देते थे, पानी के अंदर, तो वो सांस नहीं ले पाता, थोड़ी थोड़ी में हाथ ऊपर नीचे फटफटाने लगता है, पांव फटफटाने लगता है, सांस अटक गई, बस अब मरने ही वाला है, बस मरने ही वाला है, बस एक सेकंड के लिए बाहर निकलने सांस ले, जैसे एक सांस ले फिर से वापिस अंदर कुछ पानी आ गया, फिर फटफटाना है, फिर हाथ ऊपर फटफटाता है, पांव फटफटा, फिर वापिस बाहर निकलता है, बड़ा कष्ट होता है, बड़ा कष्ट होता है। फिर बोलते हाँ ये गलती मैंने की थी, मेरा ही गलत है, मेरा ही पाप है, अब ऐसा नहीं करूंगा, अब आगे से ऐसा नहीं करूंगा। तो माया इस तरह से निरंतर हमें कभी स्वर्ग उठाए कभी नरक उठाए टॉस करती रहती है, कभी इधर से उठाकर के उधर पटकती है, वॉलीबॉल की तरह इधर से उठाकर उधर, सामने सामने से उठा कर इधर पटकते रहते इधर से, यही हमारा लाइफ चल रहा है। कभी मनुष्य जन्म में आया, कभी कुत्ता बन गया, कभी बिल्ली छिपकली बन गया, चूहा बन गया, फिर बन गया, कभी कुछ ना कुछ बनते रहते अपने अपने कर्मों के आधार से। तो ऐसे बद्ध जीव जो होता है, माया मुग्ध जीव, जैसे किसी को भूत लग जाता है ना, ऐसी हालत पिशाची पाइल जन मति छन्न हो, मायाग्रस्त जीव है ऐसे। किसी व्यक्ति को माया अगर लग जाए, भूत डाकिनी लग जाए तो क्या होता है, उसका अपना जो बोलने का आवाज बदल जाता है, उसका सोचने का तरीका अलग हो जाता है, दूसरा कोई सोचता है, दूसरी आत्मा प्रवेश कर लेती है, तो बोलने का, सोचने का, चलने का सब बदल जाता है। इसको घोस्टली हॉन्टेड बोलते हैं ना, इस तरह से। तो उसको तो ये माया रूपी डाकिनी लग गई हमें, इसलिए हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सोचते हैं, और हमारा जो स्वरूप है वास्तव में वो क्या था, जीव स्वरूप ये हमारा स्वस्थ रूप है। कोई आदमी अगर स्वस्थ है, स्व में स्थिर, क्या भाई आप स्व में स्थिर हो, आप स्वस्थ हो, ऐसे पूछे आप ठीक हो ना, स्वस्थ हो क्या, आप स्व में स्थिर हो। स्व का अर्थ होता है आत्मा, क्या आप आत्मा में स्थिर हो, ये पूछा जाता था पहले, क्या आप जानते हो कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, दिस इज कॉल्ड स्वास्थ्य, ये हमारा स्वास्थ्य है। ये वो क्या स्वास्थ्य है, ये तो रोगी अवस्था है जिसमें हम आ रहे हैं। तो माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, ये माया मुग्ध जीव जो है उसको कृष्ण का ज्ञान अपने आप नहीं आता, जीवे न कृपाया कैला कृष्ण वेद पुरुष। इसलिए जीवों को भगवान ने खजाना दिया है शास्त्र रूपी भक्तों रूपी। और ये इसका तात्पर्य प्रभु समझाते हैं कि जो दिया ना कृष्ण कृपा किया, वो कौन सा कृपा है, गुरु शास्त्र और परमात्मा, ये आपको हृदय से परमात्मा बताते हैं, शास्त्र के रूप में स्वयं कृष्ण बताते हैं और गुरु आपको इसको सिखाते हैं। तो ये तीनों चीज से कृष्ण का ज्ञान जो है वो उजागर किया जा सकता है। शास्त्र में तीन महत्वपूर्ण विषय की चर्चा हुई, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, भगवान के साथ अपना संबंध को स्थापित करना, ये पहला स्टेप है अध्यात्म ज्ञान का। मैं जीव हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण मेरा अंतिम स्वामी है, पालक है, भोक्ता है, और मेरा कार्य उनकी सेवा करना, ये संबंध स्थापित करना। अधिकतर हम लोग अभी तक भगवान के साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाए, कई बार दीक्षा लेने के बाद भी नहीं हो पाता, नाम दीक्षा के बाद भी नहीं। संबंध स्थापित करना ऐसा नहीं कि केवल फॉर्मेलिटी है, संबंध स्थापित करना हार्ट टू हार्ट रिलेशन भगवान के साथ होना चाहिए, हार्ट टू हार्ट रिलेशन। कृष्ण है वो भी रसमय है, एक्सचेंज करते हैं रसों का, रिलेशन होना चाहिए भगवान के साथ, संबंध स्थापित करना। फिर अभिधेय क्या है, अभिधेय है भगवान की भक्ति, ये है भक्ति। जिस मार्ग से उस संबंध में जो लक्ष्य है भगवान का, प्रेम प्रयोजन बोलते हैं जिसको, वो प्रेम प्रयोजन जो है उसको प्राप्त करने का उपाय क्या है, वो है भक्ति। भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त्या भक्ति के बिना और कोई उपाय, भक्त्या केवल रहेगा, केवल एक ही मार्ग है भक्ति, और कोई मार्ग है ही नहीं जिसके माध्यम से आप भगवान को समझ सकते हो, केवल भक्ति ही एकमात्र ऐसा साधन है। कल परसों हमने चर्चा किया था इस क्वेश्चन के, भक्ति के बिना और कोई साधन नहीं है, ना कर्म से हो सकता है उसमें तो भौतिक संसार में फंस जाते हैं, ना ज्ञान से हो सकता है क्योंकि उसमें तो मुक्ति की इच्छा से फंस जाते हैं। तो इस तरह से भक्ति से उत्तम कुछ भी नहीं है। इसलिए फिर चैतन्य महाप्रभु ने एक एस्ट्रोलॉजर का स्टोरी बताया कि एक एस्ट्रोलॉजर था और वो एक बार एक व्यक्ति के पास पहुंचा, उसका उसने बताया कि देखो तुम इतने दुखी क्यों हो, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खजाना छोड़ के गए, कृष्ण हमारे परम पिता है तो उन्होंने भी हमारे लिए खजाना छोड़ा। तो बोले कौन सा खजाना है, बोले हाँ बता दो खजाना कहां पर है, अरे इधर मेरे पास ही, हाँ तुम्हारे पास ही है, कहां पर है, तो कहा कि अगर तुम दक्षिण दिशा में अगर थोड़ा सा खुदाई करोगे, थोड़ा सा तो दक्षिण दिशा में खुदाई करने से संभालना, वहां पर क्या बोलते वो भावरों का हानि, मधपुड़ा क्या बोलते हैं जो हानि का जो मधुमक्खी का छत्ता, तो वो निकलेगा, वो वहां से इतनी सारी मधुमक्खी निकलेगी, सब टूट पड़ेगी तुम्हारे ऊपर, इसलिए संभालना, वहां पर मत खोलना, दक्षिण में करोगे तो ये निकलेगा। अच्छा तो पश्चिम में खोदे। बोले नहीं, पश्चिम में खोदोगे तो वहां से एक भूत निकलने हो, भूत निकलेगा। पश्चिम दिशा में भूत रहता है यक्ष, और वो तुम्हारा मन को डिस्टर्ब कर देगा, मन को विचलित कर देगा। ठीक है, तो फिर मैं उत्तर में खोदो। बोले नहीं, उत्तर में मत खोदना, उत्तर में खोदोगे तो वहां से एक काला बड़ा विषैला अजगर सांप निकलेगा, सीधा डस लेगा, निगल लेगा, मत जाना उसके पास। किंतु पूर्व में थोड़ा सा मिट्टी, क्या हो गया, ज्यादा खुदाई करके आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा हटाओगे मिट्टी, तुरंत तुम्हारा हाथ खजाने को स्पर्श कर लेगा, थोड़ा सा बस। तो महाप्रभु बताया कि जो मधुमक्खी का जो जो छत्ता जो है उसका तुलना की जाती है कर्म योग के बाद, कर्म के माध्यम से जो कर्मी है तो उसमें से जो मक्खियां निकलती है वो भौतिक इच्छा मिलेगी उससे। कितनी होती मधुमक्खियां? अनगिनत है ना, कोई गिनने थोड़ी जा सकता है। तो भौतिक इच्छा है, अनगिनत भौतिक इच्छा है हमारे पास, टूट पड़ेगी हम पर अगर हम कर्म का मार्ग स्वीकार करते हैं। तो अगर हम पश्चिम में खोलेंगे तो पश्चिम में भूत निकलेगा यक्ष, उसको कई बार गण्याम की उपाधि, और गण्याम आपको नेति नेति में फंसा देगा। बोले कौन कृष्ण है, कौन कृष्ण नहीं है, कौन आत्मा तत्व है, कौन आत्मा तत्व, उसमें फंसा देगा, उसमें मत फंसना, गण्याम मार्ग में मत फंसना। उत्तर में गए तो काला सांप, विषैला सांप निकलेगा, उसकी वो पॉइजन देने वाला है, नस मारेगा। तो कौन सा पॉइजन है? निराकार में ब्रह्म होने का, ब्रह्म में विलीन होने का पॉइजन देगा वो योग। इसमें मत फंसना, ना ग्रहण कर्म से तुम खजाना प्राप्त कर सकते हो, ना ज्ञान से और ना ही अष्टांग योग से वो चीज को प्राप्त कर सकते हो जो भक्ति के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। तो वहां पर प्रेम छुपा हुआ, तुरंत आपको प्रेम प्राप्त हो जाएगा। फिर भगवान के स्वरूप का वर्णन है, वो बताते आश्रय तत्व और आश्रित तत्व, दो चीजें यहां, आश्रय और आश्रित। आश्रय कौन है? भगवान। और आश्रित कौन है? जीव। हम आश्रित है, और हिंदू तत्व का महिमा बताए, आश्रय तत्व क्या है, आश्रय तत्व, आश्रय तत्व जो स्वयं भगवान, उनके अनेक रूप है, भगवान उनके अलग अलग रूप है, अनलिमिटेड फॉर्म्स, अनंत स्वरूप है। क्या है वो? धर्म संहिता बताया, या अच्युत अनादि अनंत रूपम, शुरुआत होती है अद्वैतम अच्युत अनादि अनंत रूपम। भगवान का रूप है अद्वैत, आत्मा शरीर में कोई अंतर नहीं, अच्युतम, गलती नहीं करते कभी, अनंतम अच्युत, अद्वैतम अच्युत अनादि, इसका कोई आदि भी नहीं है, इसको कहां से प्रकट हुआ, वही पूर्ण सब अनंत रूपम, अनंत रूप है वो, तो स्थल में भी अनंत है, समय में भी अनंत है। इधर से बैठे बैठे विस्तार कर सकते हैं अपना ब्रह्मांड, वो भर लेते हैं पूरा, वामन देव किए थे, अनंत रूप हमेशा रहता है, नष्ट नहीं होता, अनादि अनंत रूप, आद्यम सबका आदि मूल वो है, पुराण पुरुषम सबसे पहले पुरुष ही वही है, नव योग अनंत फिर भी हमेशा ही हुआ है। फिर महाप्रभु बताया ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सभी ईश्वर में परमेश्वर है कृष्ण, अनादिदि गोविंद सर्व कारण कारण, वही सभी आदमियों के सब मूल आदि वो है, और सारे कारणों का अंतिम कारण भी वो है, अनादिदि गोविंद सर्व कारण कारण। फिर भगवान ने बताया संक्षिप्त में, मैं आपको एक करके बता रहा हूं, जिस वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं विज्ञानमत्वेन, బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవాన్ ఇది శబ్దతే. ఈ పరం భగవాన్ జో హే మూల్ పూర్ణ పురుషోత్తమ కృష్ణ, ఉన్కో తీన్ రూప్ సే పహచానా జా సక్తా హై. తీన్ ఉన్కా అలగ్ అలగ్ స్టేజెస్ సే సమజ్నే కా, పహలా హై బ్రహ్మ నిరాకార, దూసరా హై పరమాత్మా ఔర్ తీసరా హై భగవాన్. ఇట్స్ వండర్ఫుల్ వెరీ డీటెయిల్డ్ నాలెడ్జ్. బ్రహ్మ కే విషయం మే బతాయా కి జైసే సూర్య కా కిరణ్ హై ప్రకాశ, యహాన్ పర్ సూర్య ప్రకాశ హై, కహీన్ పర్ ఆ రహా హై అభీ సుబహ థా సర్, సూర్య ప్రకాశ జో హై బాహర్ దేఖో తో సూర్య ప్రకాశ ఉస్కో ఐసా బోలేంగే కి వో సూర్య హై నహీ, ఫిర్ భీ సూర్య సే అలగ్ హై నహీ, తో బ్రహ్మ నిరాకార సూర్య కా ప్రకాశ హై. ఫిర్ బోలా జో హై పరమాత్మా స్వరూప ఔర్ అంతిమ జో సాక్షాత్కార హై వో హై పరమేశ్వర భగవాన్ సాక్షాత్కార. ब्रह्म की उपासना करने वाला जो होता है ज्ञानी होता है, परमात्मा का उपासना करने वाला जंगली योगी होता है, लेकिन जो भगवान के शरणागत होता है वही भक्त होता है. इसमें भक्त जो होता है या भगवान का जो साक्षात्कार है वो है सर्वश्रेष्ठ और टॉपमोस्ट भगवान की शरणागत है. कुछ लोग बोलते हैं कि आपके हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता है, बहुत सारे भगवान है ना, बहुत सारे भगवान नहीं है, भगवान तो एक ही है सब जगह, किसी भी धर्म में जाओ भगवान एक ही हो सकते हैं, अनेक नहीं हो सकते. तो फिर आपके सारे इतने सारे देवी देवता, वो तो डेमी गॉड छोड़ो, तो सब डिपार्टमेंटल हेड है. अरे चलो डेमी गॉड को छोड़ दो, फिर भी आपके पास बहुत सारे राम नृसिंह वराह कितने सारे भगवान है. तो कोई लोग इसको सोचते थे, आप इसको अगर आप समझोगे तो आप समझ जाएंगे. मैं आपको संक्षिप्त में चार कुछ भगवान के रूप के विषय बताना चाहता हूँ, 10 मिनट लगेगा फिर समाप्त करेंगे हम इसको, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने का प्रयास करोगे तो समझ जाएंगे. चेतन चेतन ऐसे ही पीएचडी थोड़ी बोला है प्रभुपाद ने. तो प्रभुपाद चेतन यहाँ पर चेतन रावत बताते हैं कृष्ण के जो स्वरूप होते हैं उसमें से तीन महत्वपूर्ण रूप होते हैं. एक होता है स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और विलास रूप. ये तीन स्वरूप है कृष्ण के, इसमें सब कुछ आ जाता है अधिकतर. स्वयं रूप, स्वयं रूप तो स्वयं वो ही कृष्ण है, जो खुद स्वयं कृष्ण त्रिभंगी स्वरूप वही कृष्ण है. और ये कृष्ण स्वयं रूप के दो डिवीजन आते हैं, प्राभव प्रकाश, प्राभव प्राभव प्रकाश वैभव विलास. ये प्राभव प्रकाश वैभव प्रकाश ये भी बोल सकते हैं. ये प्राभव और वैभव ये दो हैं कृष्ण के, ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में, लेकिन कृष्ण अपना विस्तार करते हैं और स्वयं जो विस्तार करते हैं, जैसे कैसे मथुरा और वृंदावन. तो कृष्ण तो वृंदावन में है, लेकिन मथुरा में जो एक्सपांसन जाता है वो भगवान अपना प्रकाश वैभव प्रकाश वो भेज देते हैं. तो कृष्ण मूल वही, लेकिन अपना अंश विस्तार करते हैं. ये अचिंत्य भेदाभेद है, अचिंत्य भेदाभेद, एक ही व्यक्ति है लेकिन एक्सपांसन करते हैं. भगवान के एक्सपांसन का कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड है. एक योगी साधारण रूप से 8 से 9 से अधिक एक्सपांसन नहीं कर सकता एक योगी. तो सौभरी मुनि का हमने बात किया था पहले बीच में, सौभरी मुनि जो है उसने एक्सपांसन किया था 8-9, अधिक उससे अधिक नहीं हो सकता, और वो भी क्लोन होता है एग्जैक्टली, अलग अलग नहीं हो सकता. तो भगवान 16,160 अलग अलग राज्य के साथ अलग अलग विस्तार किए. वेरी डिटेल नॉलेज है, लेकिन हम इसमें संक्षिप्त में आपको बता देता हूं, हो सके उतना प्रयास कीजिए समझने का. फिर होता है तदेकात्म रूप. ये तदेकात्म रूप का अर्थ होता है वही भगवान, लेकिन वो स्वयं भगवान अपने आप को विष्णु स्वरूप में विष्णु तत्व वो विस्तार करते हैं अपना अलग अलग स्वरूप में अलग अलग भाव से। जैसे नरसिंहदेव में क्रोध प्रदर्शित किया, रामचंद्र में उन्होंने सौंदर्य प्रकट किया, मर्यादा प्रकट की, इस तरह से अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग गुण को प्रदर्शित करते हुए अलग अलग अवतार भगवान स्वीकार करते। इसमें इस अवतारों की 6 कैटेगरी से अलग अलग अवतारों की 6 कैटेगरी में जो पहला कैटेगरी है उसको बोलते हैं लीला अवतार। लीला अवतार में क्या होता है, राम नृसिंह वरा वामन इत्यादि अलग अलग लीलाओं को प्रकट करते हैं भगवान। बहुत सारे कई लीला अवतार है, भगवान रामचंद्र का लीला किया, नृसिंह का किया, फिर कुर्म का किया, ऐसे कई लीला अवतार है। मुख्य रूप से राम नृसिंह वराह वामन ये सब लीला अवतारों में आते हैं। तो भगवान अपनी लीला अवतार प्रस्तुत करते हैं। फिर दूसरा कैटेगरी है पुरुषावतार। ये पुरुषावतार 3 अलग अलग विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। एक होता है महाविष्णु, जिनके हरेक रूप में से एक एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। जैसे वो श्वास बाहर फेंकते हैं, हजारों लाखों अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, और जैसे ही सांस अंदर लेते हैं सारे ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है, सब कुछ उनके अंदर चला जाता है। ये है महाविष्णु। और ये महाविष्णु हरेक ब्रह्मांड में है। कितने ब्रह्मांड है इस हॉल को मस्टार्ड सीड से राई के दानों से भर दो, कितने राई के दाने होंगे, अनंत, इसको गिन थोड़ी सकते। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड में, ऐसे हर एक ब्रह्मांड में भगवान महाविष्णु अपना विस्तार करते हैं गर्भोदर विष्णु के रूप में। गर्भोदर सह विष्णु उस ब्रह्मांड को आधा अपने पसीने से भर देते हैं और उसके ऊपर शयन करते हैं, वो गर्भोदर सह विष्णु, जिनकी नाभि में से ब्रह्मा जी का जन्म होता है, ये गर्भोदर सह विष्णु। और तीसरा सिद्धक्षय विष्णु जो श्वेत द्वीप में रहते हैं, सुदक्षय विष्णु सबके हृदय में परमात्मा के रूप में जो विराजमान है वो सुदक्षय विष्णु। ये 3 पुरुष अवतार है भगवान के, कारण साई विष्णु, गर्भोदर साई विष्णु, सुदक्षय विष्णु। ये हुआ दूसरा कैटेगरी भगवान के अवतारों का। फिर तीसरा कैटेगरी है गुण अवतार। प्रकृति के 3 गुण है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुणों को अधिष्ठाता बनाने के लिए 3 गुणों को एक एक अवतार के रूप में भगवान प्रस्तुत किए। ब्रह्मा जी को रजोगुण का, शिव जी को तमोगुण का, सर्जन का और विसर्जन का। पालन करने का काम बहुत मुश्किल होता है, इसलिए खुद अपने पास ही रख लिया सुदर्शन विष्णु ने। वो पालन करने, कुछ नया चीज बनाना आसान है, उसको तोड़ देना भी आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करके रखना ये मुश्किल है। ये काम भगवान बोले मैं करूंगा विष्णु। तो ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश, शिव जी, ये 3 है गुण अवतार अलग अलग। ये हुआ तीसरा कैटेगरी। फिर चौथा कैटेगरी है शक्त्यावेश अवतार। शक्त्यावेश अवतार में भी 3 प्रकार है। शक्त्यावेश अवतार 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष शक्त्यावेश अवतार, परोक्ष शक्त्यावेश अवतार और विभूति शक्त्यावेश अवतार। ये 3 प्रकार के शक्त्यावेश अवतार। प्रत्यक्ष शक्त्यावेश अवतार में होते हैं वो विष्णु तत्व होते हैं, वो जैसे अनंत शेष ये शक्ति आवेश होता है, भगवान ने उसको शक्ति दिया है, शक्ति आवेश होता है। लेकिन इनडायरेक्ट परोक्ष रूप में जो शक्ति आवेश अवतार होता है वो जीव होते हैं, जैसे नारद मुनि वो शक्ति आवेश, उनको शक्ति दिया है। श्रील प्रभुपाद जिनको प्रचार की शक्ति दी, व्यास देव जिनको ग्रंथ तक लिखने की शक्ति दी, ऐसे अलग 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 शक्ति जिनको दी जाती है, वो सत्यावेश अवतार होता है। अवतार है फिर भी, अवतार किसको बोलते हैं, जो नीचे से ऊपर से नीचे आते हैं, अवतीर्ण होते हैं। जो ऊपर रहते हैं वो अवतार नहीं, जो नीचे आते हैं वो कृष्ण भी कभी कभी अवतार के रूप में माने जाते हैं। तो लीला अवतार की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो लीला करने के लिए भगवान नीचे आते हैं, अवतीर्ण होते हैं, तो यहाँ लीला भी करते हैं, लेकिन वही स्वयं कृष्ण है, इसलिए अवतार ही है। थोड़ा सा दिमाग बुद्धि लगाने से समझ पाएंगे, वेरी इजी, बहुत आसान है समझना। सेम पर्सन कृष्ण, इसको कभी कभी कृष्ण को अवतार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अवतार लीला अवतार लेकर के प्रकट हो रहे, इसलिए है तो वही मूल। जैसे समझ लो कि राजा कभी कोई काम खुद कर ले, मंत्री से ना करवाए तो क्या वो मंत्री बन जाता है? नहीं, वो तो राजा ही रहता है। तो इस तरह से सत्यावेश अवतार में एक प्रत्यक्ष, फिर एक परोक्ष और एक विभूति है। सत्यावेश में विभूति अवतार, ये विभूति कौन सी है? भगवद गीता ने बताई है विभूति अलग अलग प्रकार की है ना, कौन सी? जैसे भगवान बताते हैं कि देवताओं में इंद्र में हूं, असुरों में प्रहलाद में हूं, नक्षत्रों में चंद्रमा में हूं, पर्वत नहीं पालर, ये विभूतियां है सब। हालांकि वो लोग भगवान नहीं है, वो लोग भगवान नहीं है, लेकिन वो सबसे उत्तम है, इसलिए भगवान शक्ति का एक अंश उनको प्राप्त हुआ है। मनुष्य में राजा मैं हूं, भगवान बता रहे, तो सभी मनुष्य तो राजा नहीं बन पाते ना, कोई एक ही बनता है। तो जो राजा बनता है उसको भगवान की शक्ति का एक अंश अलग से प्राप्त हुआ है, तब जाके राजा बनाओ। इसे शक्त्यावेश बोलते हैं, विभूति को शक्त्यावेश होता। ये हुआ चौथा कैटेगरी, और पांचवा कैटेगरी है मनवंतर। 14 मनु होते हैं ब्रह्मा के दिन में, और हरेक मनु के काल में एक अवतार होता है, इसको बोलते हैं मनवंतर अवतार, अलग अलग। और हमारे 7वां मनु चल रहा है, वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु। तो ये वैवस्वत मनु का जो अवतार है वो कौन सा है? ना, वैवस्वत मनु का अवतार है हमारे 7वें मनु का जो अवतार है वामन देव। हमारे एक्जिस्टिंग जो चल रहे उनका मनवंतर अवतार के रूप में वो है वामन देव, मनवंतर अवतार। तो कभी हो सकता है कि लीला अवतार भी मनवंतर अवतार हो सकता है, कई बार और कोई अवतार दूसरे अवतार का स्थान ले सकता है। और अंत में है युग अवतार। हाँ जी, वामन की इन द पीरियड ऑफ वैवस्वत मनु, वामन का प्रकट जो हुआ था भरूच भृगु कच्छ सूरत के पास है ना, भरूच वहां पर प्रकट हुए थे वामन देव। अभी के वामन देव किस बात में थे? वो वामन देव 7वें मनु के काल में मनवंतर अवतार के रूप में प्रकट हुए, कहने का तात्पर्य है लीला अवतार तो है लेकिन मनवंतर अवतार के रूप में प्रकट हुए। 14 मनु का एक अवतार होना चाहिए, वामन देव आ गया। फिर युगा अवतार, 4 युग है सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, तो हर एक युग में एक एक अवतार होता है। 3 अलग अलग कलर है ना, 4 कलर भगवान बताए कौन से हैं, श्वेत है, लाल है, रक्त है, घनश्याम है और पीत है, ये 4 कलर मुख्य है। तो इसमें त्रेता युग में रामचंद्र प्रकट हुए थे युग अवतार के रूप में, द्वापर में कृष्णा, लेकिन कलयुग में कौन था? कलयुग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। हालांकि वो किसी भगवान, अगेन स्वयं ईश्वर है, सर्वस्वतंत्र है, कोई नियम बांध नहीं सकता उनको, ऐसा नहीं कि एक युग में दो अवतार नहीं हो सकता, हो सकता है। सारे नियम तो बनाने वाले वो है। तब कलयुग में अंत में एक आएगा कल के अवतार, लेकिन युगावतार के रूप में तो चैतन्य महाप्रभु है। तो इस तरह से तदेकात्म रूप का चर्चा हमने किया। ये वो सेकंड कैटेगरी तदेकात्म रूप। अभी थर्ड कैटेगरी है विलास रूप। विलास रूप का अर्थ होता है कि भगवान अपना विस्तार करते चार अलग अलग स्वरूप में, सो चार हाथ वाले होते सब विलास रूप। जैसे भगवान कृष्ण का प्रथम आविष्कार है बलराम, बलराम के बाद महाशंकर्षण का प्रकट होता है। इसमें चार चतुर्वेद है, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव, ये चार। ये महासंकर्षण में से ये तीन पुरुष अवतार प्रकट होते हैं। तो ये जो क्षरलक्षण विष्णु तक जितने भी अवतार है सब, वो सब, और इसके अलावा वैकुंठ में अनेक अनेक स्वरूप है, पद्मनाभ, मुकुंद, वामन, इस तरह से अलग अलग। और ये लोग चार हाथ में चार अलग अलग धारण करते हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म। सबके अपने अपने लोक है, सबका अपना वैकुंठ लोक है सबका। और कभी शंख, चक्र, गदा, पद्म, कभी चक्र, शंख, पद्म, गदा, कभी गदा, शंख, चक्र, पद्म, इस तरह से अलग अलग धारण करते हैं। और इस तरह से अलग अलग नाम उनके भगवान के होते हैं, अलग अलग नाम धारण, और अलग अलग लोक होते हैं उनके साथ। तो ये सारे रूपों को विलास रूप बोलते हैं। तो इस संक्षेप में हम आपको बताया, और वैकुंठ की हम बात कर रहे थे, तो फिर महाप्रभु बताते हैं कि वैकुंठ जो है वो पूर्ण धाम है, पूर्ण भगवान का धाम है वैकुंठ पूर्ण। लेकिन वैकुंठ से आगे है गोलोक मथुरा, वो जो मथुरा है वो पूर्णतर है, पूर्ण पूर्णतर उसके भी आगे, और उससे भी श्रेष्ठ है गोलोक वृंदावन, वो पूर्णतम है। और गोलोक वृंदावन में भगवान की अलग अलग लीलाओं में से गोलोक सबसे श्रेष्ठ है। और गोलोक में भगवान का स्वरूप होता है ऐसे कृष्ण लीला में क्या, बाल्यावस्था, पौगंडावस्था, कुमारावस्था, किशोरावस्था, ये चार अवस्थाएं हैं। ये चार अवस्था में भी जो सर्वश्रेष्ठ अवस्था है वो है किशोर अवस्था। ये भगवान की सनातन अवस्था है किशोर, इसको छोड़ करके भगवान ये बस खत्म। किशोर अवस्था महाभारत के युद्ध में जब गीता का उपदेश दिया तभी भी किशोर थे, ये उनकी सनातन अवस्था है किशोर अवस्था। तो ये वर्णन के साथ ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। यस,
हाँ,
वही वृंदावन ओरिजिनल। तो ये अलग अलग स्वरूप में अंत में हमने समय के रूप में ये देखा कि भगवान कृष्ण का जो युद्ध स्वरूप है किशोर अवस्था वो उत्तम है, और फिर आगे भगवान के ऑपुलेंस और भगवान की माधुर्य का वर्णन आता है आगे के चैप्टर्स में। तो हमने संक्षिप्त में आपको सनातन शिक्षा का सार प्रस्तुत किया आपके सामने। अभी तो कुछ शुरुआत ही था, 20% की हमने चर्चा किया वो भी संक्षिप्त में, लेकिन आप सोचिए सनातन शिक्षा को पूरा समझेंगे तो कितना उत्तम। और उसमें भी इस प्रकार से अगर हम डिस्कशन करके सीखते हैं तो सुपर पीएचडी बन जाएंगे, और प्रॉपरली इसको प्रभुपाद के किताब के माध्यम से, तात्पर्य के माध्यम से सीखेंगे। व्हाट एल्स यू नीड टू नो, कुछ ऐसे हमारे विचार भी सोच भी नहीं सकते कि इतना भी ज्ञान होता है चैतन्य चरितमृत में। यस, चैतन्य चरितमृत में ये सब बताई गई है, बात सब बताया। इसे चैतन्य चरितमृत तो बहुत प्रिय है, इसे तो प्रयास कर रहे हैं कि ये चैतन्य चरितमृत आप लोग अपने घर पे रखिए, पढ़िए इसको, इसको सीखने का प्रयास कीजिए, समझिए, क्योंकि भक्ति लता सबको नहीं मिलती,